بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمْ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। दोस्तों, आज बुधवार है, आबान की 4 और अक्टूबर की 26 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 29 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आपकी सेवा में राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आशा की किरण, और अंत में आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम आज कल। उससे पहले दोस्तों, एक विशेष सूचना जो आप तक पहुंचानी है वो ये है कि 30 अक्टूबर को से हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो बदल रही है, और अब आप हमारे कार्यक्रम को 31 मीटर बैंड बराबर 9,620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का चलन रुकने वाला नहीं, राष्ट्रपति रईसी। ईरान के युद्धपोत अबू मेहदी नौसैनिक क्रूज मिसाइल से होंगे लैस। पोप की बहरीन यात्रा से पहले जेलों में कैद धर्मगुरुओं ने दिया ईसाई धर्मगुरु को खास संदेश। रूस के नए ऐलान ने एक बार फिर दुनिया का चढ़ाया पारा, बाइडन बोले ये होगी बड़ी गलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया है कि विश्व में जारी बहुध्रुवीय व्यवस्था का चलन रुकने वाला नहीं है। तेहरान में एशिया प्रांत समाचार एजेंसियों के संगठन काना की 18वीं महासभा के दौरान इस्लामी गणराज ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने समाचार एजेंसी स्पूतनिक के साथ बातचीत करते हुए विश्व को नुकसान पहुंचाने वाली अमेरिका की नीतियों और भूमिका की ओर इशारा करते हुए विश्व में जारी बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर भी संकेत किया। राष्ट्रपति रईसी का केवल पश्चिमी देश ही बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण का विरोध करते हैं, हालांकि इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दुनिया के बाहर कई शक्ति केंद्र हैं, ये दुनिया शंघाई सहयोग संगठन जैसे क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से बनेगी। इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति ने तेहरान और मास्को के बीच मजबूत आपसी सहयोग की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम रूस के साथ संबंधों के विकास को गंभीरता से लेते हैं, और ईरान उन राष्ट्रों का समर्थन जारी रखेगा जो स्वतंत्रता का पालन करते हैं। राष्ट्रपति रईसी ने आगे बताया कि देशों पर प्रतिबंध लगाकर उन देशों को प्राप्त करने की अमरीकी योजना पूरी तरह विफल हो गई है। जैसा कि अमेरिका पहले ही महसूस कर चुका है कि प्रतिबंध अब काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने अन्य तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन्हीं तरीकों में से एक साइबर आतंकवाद उसका मुख्य हथकंडा है। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में दंगे भड़काने की साजिश रची, लेकिन इस बार फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। ईरानी नौसेना के कमांडर एडमिरल شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ دیش کے یدھ پوت ابو مہدی نوسینی کروز میزائل سے لیس ہوں گے. میزائل کا نام عراق کے سوئم سیوی بل حشد الشعبی کے پورو ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہیں امریکہ نے آئی آر جی سی کی قدس بریگیڈ کے پورو کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ 2020 میں بغداد ایئرپورٹ کے پاس شہید کر دیا تھا. ایڈمیرل ایرانی نے بتایا کہ پوتوں پر میزائل استھاپت کرنے کا کام چل رہا ہے. اس کے بعد سے دیش کے یدھ پوت ادھک شکتیشالی کروز میزائلوں سے لیس ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ابو مہدی نوسینک کروز میزائل استھاپت ہونے کے بعد الیکٹرانک یدھ پرنالی میں اپنے کاریوں کو اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن میزائل کی وشیشتاؤں سے اوگت ہیں اور وہ کارروائی میں اس کی شمتاؤں کو دیکھ چکے ہیں. ایرانی نوسینا کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ ابو مہدی کروز میزائل کی یدھ شمتا تباہ کرنے کی شکتی اور رینج مہتوپورن ہے اور ہم نے اپنے ایجنڈے میں اچھ رینج نردھارت کی ہے. اسلامی گڑتنت ایران نے سیریا کے ورودھ اسرائیل کے نینترن اتکرمڑوں پر سرکشا پریشد کی چپی کی کڑے شبدوں میں نندا کی ہے. سنیکت راشٹر سنگھ میں ایران کے راجدوت اور استھائی پرتندھی امیر سعید ایروانی نے سیریا میں اسرائیل کے نرنتر حملوں پر سرکشا پریشد کی چپی کی آلوچنا کی ہے. ایران پریس کے انوسار نیو یارک میں سنیکت راشٹر سنگھ میں ایران کے راجدوت نے سرکشا پریشد کی بیٹھک میں سیریا کی استھتی پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد میں اسرائیل کی نندا کے لیے سیریا کی نرنتر مارن کے باوجود اسرائیل کی اور سے سیریا کی اکھنڈتا اور سویتتا کا الگھن نرنتر کیا جا رہا ہے. انہوں نے بل دیا کہ سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کی چپی نے اسرائیل کو ویاپک استر پر اور کھل کر اپرادھ انجام دینے کو پریرت کیا ہے، جس میں سیریا میں عام ناگرکوں اور آدھار بھوت ڈھانچے کو نشانہ بنانا شامل ہے، جو انتراشٹریہ نیموں اور مانوادھیکاروں کا کھلا الگھن سمجھا جاتا ہے. بحرین کی جیلوں میں قید دھرم گروؤں اور ودوانوں نے پوپ فرانسس کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ بحرین کی اپنی آگامی یاترا کے دوران سچ بولیں گے اور اپنے وویک کی آواز سنتے ہوئے اس کا جواب دیں گے. سماچار ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے مطابق بحرین کی آل خلیفہ شاسن کی جیلوں میں قید اس دیش کے دھرم گروؤں اور ودوانوں نے پور پشچم سموات سمیلن میں بھاگ لینے 3 سے 6 نومبر کو بحرین کی یاترا پر پہنچ رہے عیسائی دھرم کے سب سے بڑے دھرم گرو پوپ فرانسس کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنے لکھت بیان میں لکھا ہے کہ آپ اس دیش میں قدم رکھیں گے جہاں اس دیش کے لوگوں کے لیے سہیشوتا اور ایک ساتھ جیون کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور اس میں نیائے اور پروپکار کا ورنن کیا جاتا ہے، لیکن اب اس دیش میں انیائے اتپیڑن اور اتیاچار نے اپنے پیر پسار لیے ہیں. شیخ عبد الجلیل المقداد، شیخ سعید النوری، شیخ محمد حبیب المقداد اور شیخ علی سلمان یہ وہ دھرم گرو اور ودوان ہیں جو آل خلیفہ کی جیلوں میں راجنیتک قیدی ہیں. انہی کی اور سے پوپ فرانسس کے نام پر خاص سندیش کے ساتھ ایک بیان پرکاشت کیا گیا ہے. پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ڈر کی مورت کو دھوست کرنے کا سبق سیکھا ہے. پراپ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پورو پردھان منتری اور تحریک انصاف پارٹی کے پرمکھ عمران خان نے بدھوار کی صبح پاکستان کے پنجاب پرانت کے سیالکوٹ شہر میں چھاتروں کے ایک سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہیں کوفے کے لوگ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سچ پر ہیں، لیکن یزید کے اتپیڑن اور بھے کے کارن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پچھتائے اور ظلم کی چکی میں پستے رہے. عمران خان نے کہا کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح اتیاچار اور ڈر کی مورت کو دھوست کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ واستوک آزادی کے اس آندولن میں آپ سب کو شامل ہونا ہے. طالبان نے فلسطین کے مدعے کو اسلامی راشٹروں کا سب سے مہتوپورن مدعا بتایا ہے. سماچار ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے پروکتا ذبیح المجاہد نے ترکیے میں فلسطین کے پرتیرودھ آندولن حماس کے نیتا اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی. اس ملاقات کے موقع پر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ فلسطین کا مدعا سب سے مہتوپورن مدعا ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں افغانستان اور فلسطین کی تازہ استھتی کے بارے میں بھی چرچا ہوئی. بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار طالبان نے اویدھ آتنکی دمنکاری زیر شاسن کے خلاف اپنے ٹھوس اسٹینڈ کو بیان کیا ہے. روس نے اوپچارک روپ سے یہ سوچنا دی ہے کہ وہ اپنے پرمانو بلوں کے ساتھ ابھیاس شروع کرنے والا ہے. روسی ادھیکاریوں نے منگلوار کو اس کی جانکاری دی. پراپت رپورٹ کے مطابق روس نے پرمانو ابھیاس شروع کرنے کا اعلان کر کے ایک بار پھر دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے. روس کا پرمانو ابھیاس ایسے سمے ہونے جا رہا ہے جب یوکرین یدھ میں تناؤ اچانک بڑھ گیا ہے. دونوں پکش ایک دوسرے پر وناشکاری ڈرٹی بم کے استعمال کی یوجنا بنانے کا آروپ لگا رہے ہیں. تو دوستو اسی کے ساتھ سماچار یہیں پر سماپت ہوتے ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
دوستو راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم لے کر اپستھت ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے. فلسطینی کھیتروں میں اسرائیلی سینکوں کا کریک ڈاؤن, طالبان دوارا افغانیوں کی مانگوں کو اندیکھا کرنا اور کانگریس کے نئے پرمکھ کا بھاشن. دوستو یہ ہے ہماری آج کی راجنیتک چرچا کے پرمکھ وشے. اسرائیلی سینک پورے فلسطین میں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جس کے دوران کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اس سمبندھ میں ایک سمیکشا لے کر اپستھت ہیں اختر عباس.
چھ فلسطینیوں کی شہادت پر پورے فلسطین میں عام ہڑتال جاری ہے. القدس العربی کی رپورٹ کے انوسار نابلس اور رام اللہ میں ایک عام ہڑتال ہے اور لوگ زائنی سینکوں کی بربر کاروائیوں کا ورودھ اور نندا کرنے کے لیے سڑکوں پر اترے اور فلسطینیوں کے لیے انتراشٹریہ سمودائے کی مانگ کر رہے ہیں. دھیان یوگ بات یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے نابلس میں زائنیوں نے چھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی سینکوں کی کاروائی یہیں پر نہیں رکی بلکہ وہ پورے علاقے میں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. فلسطین کے سواستھ منترالے کے انوسار پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران زائنیوں کے حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہوئے, جن میں ارین الاسود نامک پرتیرودھک سنگٹھن کے 2 کمانڈر بھی شامل ہیں. منگلوار کی صبح ان شہیدوں کی ایک شاندار انتم شو یاترا نکالی گئی جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں فلسطینیوں نے بھاگ لیا اور انہوں نے اتکرمکاری زائنیوں کے خلاف سنگھرش جاری رکھنے کا سنکلپ دہرایا. ادھر حماس کے پولیت بیورو کے پرمکھ اسماعیل ہنیہ نے اس اوسر پر نابلس شہر میں زائنیوں کے تازہ اتیاچاروں پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے کہا کہ نابلس کی جنتا اپنے خون سے سمان اور عزت کا مارگ پرشست کرے گی. انہوں نے کہا کہ فلسطین کا گھر گھر شیروں کی ماند ہے, یعنی ارین الاسود ہے. اسماعیل ہنیہ نے اس نو گٹھت سنگھرش کرتا گٹ کی کاروائیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ارین الاسود نے زائنی سینا کی لاچاری اور کمزوریوں کو اجاگر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گروپ پورے فلسطین پر آدھارت ایک طاقت ہے جو اپنے خون سے اپنے اور سارے پرتیرودھ کرتا گٹوں کے بھاگے کا فیصلہ کرے گا. حماس کے پولیٹ بیورو کے پرمکھ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ گروپ भविष्य में बड़े बदलाव लाने वाला है। याद रहे कि अरिनुल अस्वद संगठन फिलिस्तीनियों पर ज़ायोनियों के ताज़ा और बार बार हमलों के बाद अस्तित्व में आया है और इस संगठन ने पिछले हफ्तों में ज़ायोनी सैनिकों और चरमपंथी ज़ायोनियों के खिलाफ कई सशस्त्र कार्रवाइयां की हैं जिससे इसराइल के वरिष्ठ अधिकारियों की नींद उड़ गई है। दूसरी ओर फिलिस्तीन के जिहादी इस्लामी संगठन ने भी एक बयान में इस बात पर जोर दिया है कि ये ऑपरेशन अतिग्रहित फिलिस्तीन की पूर्ण स्वतंत्रता तक जारी रहेगा। जिहादी इस्लामी के बयान में नाबलस और रामल्ला के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया है कि पूरा फिलिस्तीन इन शहीदों के शोक में डूबा है। इस बयान में इसराइल को चेतावनी दी गई है कि जितना अधिक फिलिस्तीनियों का खून बहाया जाएगा और उनके शहरों पर हमले किए जाएंगे उतना ही फिलिस्तीनी लोगों की एकता और प्रतिरोध में वृद्धि होगी।
जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को इसलिए मान्यता नहीं दे रहा है क्योंकि वे अफगानिस्तान के आम लोगों की मांगों की उपेक्षा करते आ रहे हैं। एक समीक्षा के साथ उपस्थित हैं साथी मोहम्मद मेहदी।
अफगानिस्तान के धार्मिक गुटों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करके व्यापक सरकार के गठन पर बल दिया है। इसका अर्थ यह है कि एक साल से अधिक का समय गुजर गया है परंतु तालिबान इस देश के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा न कर सका, जिसकी वजह से विभिन्न धार्मिक गुट कार्यक्रम आयोजित करके यथावत व्यापक सरकार के गठन पर बल दे रहे हैं। यद्यपि तालिबान अपनी आस्थाओं के अनुसार इस देश की अंतरिम सरकार को व्यापक सरकार कहता है, परंतु इस देश के बहुत से जाति व धार्मिक संप्रदाय तालिबान की सरकार को व्यापक नहीं मानते हैं क्योंकि तालिबान की सरकार में बहुत से संप्रदायों के लोग शामिल नहीं हैं और तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार में उसी संप्रदाय के लोगों को शामिल किया है जिसे वो कबूल करता है। तालिबान लोगों की मांगों की उपेक्षा कर रहा है जो इस बात का कारण बना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे अब तक न तो मान्यता प्रदान की है और ये भी पता नहीं है कि वो उसे कब मान्यता प्रदान करेगा। विश्व समुदाय के मान्यता प्रदान न करने का परिणाम ये निकला है कि न केवल तालिबान की अंतरिम सरकार बल्कि अफगानिस्तान के लोगों को भी नाना प्रकार की समस्याओं का सामना है। अफगानिस्तान के एक राजनीतिक विशेषज्ञ हुसैन मजारी इस बारे में कहते हैं कि तालिबान ने विधित रूप से व्यापक सरकार गठित करने का वादा किया था परंतु अमल में वो अपने वादे के प्रति वफादार नहीं रहा और तालिबान की सरकार में कुछ विशेष प्रकार के लोग शामिल हैं और जो लोग पश्तून नहीं हैं परंतु वे तालिबान की सरकार में शामिल हैं तो उसकी वजह यह है कि वे भी तालिबान हैं और उनका निर्धारण भी तालिबान करता है न कि आम लोग। जिन चीजों पर तालिबान आग्रह कर रहा है उनमें से एक नए संविधान का संकलन है और उसने घोषणा की है कि जल्द ही उसे प्रकाशित किया जाएगा। हर देश का संचालन उसके संविधान के अनुसार होता है परंतु तालिबान ने अफगानिस्तान के संचालन के लिए जिन कानूनों का संकलन किया है अभी वो इस देश के लोगों के लिए स्पष्ट ही नहीं है। इस आधार पर लोग अफगानिस्तान में व्यापक सरकार के गठन पर और बल दे रहे हैं। यहाँ एक अन्य रोचक बिंदु ये है कि हर देश के संविधान के संकलन में लोगों की अपेक्षाओं व मांगों को ध्यान में रखा जाता है परंतु तालिबान ने जिस संविधान का संकलन किया है प्रतीत नहीं हो रहा है कि तालिबान ने उसमें लोगों की मांगों को ध्यान में रखा होगा क्योंकि अगर वो लोगों की मांगों पर ध्यान देता तो अब तक व्यापक सरकार का गठन कर चुका होता परंतु उसने आज तक इस मांग पर ध्यान ही नहीं दिया और उसका ये अमल इस बात का सूचक है कि उसने संविधान के संकलन में भी इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया है। सैयद हुसैन आलमी बलखी कहते हैं तालिबान अब भी अपनी इच्छानुसार मामले को आगे बढ़ा रहा है और वो लोक लुभावन नारों की आड़ में अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है जबकि विश्व समुदाय और अफगानिस्तान के लोगों की अपेक्षा इससे बढ़कर है। बहरहाल अफगानिस्तान के लोग इस समय व्यापक सरकार के गठन पर बल दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि बहुत सी समस्याओं का समाधान व्यापक सरकार के गठन में निहित है।
اور شوتاؤ اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ کانگریس پارٹی کے نئے ادھیکش کے پہلے بھاشن میں ان کا پورا فوکس یوواؤں پر رہا۔ انہوں نے کہا کہ دیش بھر میں بلاک سے لے کر راشٹری استر تک سنگٹھن میں جو بھی نیوکتیاں نہیں ہوئی ہیں ان کو بھرا جائے گا۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
ملک ارجن کھڑگے کی تاج پوشی کے لیے کانگریس مکھیالے میں آیوجت ایک کارکرم میں پارٹی کی لمبے سمے تک ادھیکش رہی سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی کے اترکت پارٹی کے کئی دگج نیتا اپستھت تھے۔ کھڑگے کو اوپچارک روپ سے کانگریس کی کمان سونپنے کے بعد سونیا گاندھی نے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے پارٹی کے نئے ادھیکش کو بدھائی دی اور کہا کہ میں ذمہ داریوں سے مکت ہو کر اب راحت محسوس کر رہی ہوں۔ سونیا گاندھی نے کانگریس کے سامنے چنوتیوں کا الیکھ کیا اور کہا کہ ہمیں ان چنوتیوں سے سفلتا پوروک باہر نکلنے کا راستہ کھوجنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پورا وشواس ہے کہ ملک ارجن کھڑگے کے نیتریتو میں کانگریس پارٹی ایک جٹ ہو کر چنوتیوں کا مقابلہ کرے گی اور سفلتا پراپت کرے گی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ لوک تانترک طریقے سے کانگریس نے اپنا نیا ادھیکش چنا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ کانگریس کے سبھی نیتا ایسی شکتی بنیں گے جو دیش کی سمسیاؤں کا سفلتا پوروک سمادھان نکال سکیں گے۔
مجھے پورا وشواس ہے کہ ان سے پوری پارٹی کو ایک پریرنا ملے گی، ایک سندیش ملے گا اور ان کے نیتریتو میں کانگریس لگاتار مضبوط ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سامنے بڑے بڑے سنکٹ آئے لیکن کانگریس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ کانگریس کے نئے ادھیکش ملکا ارجن کھڑگے نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ ایک مزدور کے بیٹے اور کانگریس کے ایک سامانیہ کارکرتا کے روپ میں یہاں تک پہنچنے کا کھن میرے لیے بھاوناتمک ہے اور میں اس سمان کے لیے آپ سبھی کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کیندر کے سترول بھارتی جنتا پارٹی پر اپرتیکش روپ سے حملہ کرتے ہوئے کہا،
کس نے سوچا ہوگا کہ دیش میں کبھی ایسی راجنیتی کا دور بھی آئے گا جس میں جھوٹ کا بول بالا ہوگا اور ستا میں بیٹھے حکمران لوک تنتر کو کمزور کرنے میں جٹے ہوں گے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جھوٹ، فریب اور نفرت کا یہ تنتر ہم توڑ کر رہیں گے۔
راجنیتک ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ پچھلے چناؤں میں نرنتر ہار کا سامنا کرنے والی کانگریس کو آگامی لوک سبھا اور کئی ودھان سبھا چناؤں کے لیے آکرامک روپ سے تیار کرنے اور پارٹی کو اوپر لے جانے کی مہتوپورن ذمہ داری ملکا ارجن کھڑگے پر ہوگی، جنہوں نے پچھلے سپتاہ پارٹی ادھیکش چناؤں میں ششی تھرور کو بھاری متوں سے پراجت کر کے کانگریس ادھیکش کا پد سنبھالا ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ یدی کھڑگے اپنی رننیتی میں سفل رہے تو کانگریس میں نئی جان پھونک سکتے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ابھی کارکرم راجنیتک چرچا ہمارے ساتھی قائم رضوی سے سن رہے تھے۔ اب آپ سنیں گے کارکرم آشا کی کرن۔
आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रमों में हमने आपको बताया था कि महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम के वंश से हैं। वे महान ईश्वर की इच्छा से लोगों की नजरों से ओझल हैं। वे महान ईश्वर की इच्छा से ही लोगों के सामने प्रकट होंगे और पूरी दुनिया को उस तरह न्याय से भर देंगे जिस तरह से वो अन्याय व अत्याचार से भरी होगी। महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के बारे में जो शुभ सूचनाएं दी गई हैं वो केवल आसमानी नहीं बल्कि गैर आसमानी धर्मों में भी दी गई हैं। जिन गैर आसमानी धर्मों में महामुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना दी गई है उनमें एक बौद्ध धर्म भी है।
इस धर्म में कहा गया है कि महामुक्तिदाता अंतिम समय में आएगा। वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेगा और लोगों को दुनिया में होने वाले अत्याचार व अन्याय से मुक्ति दिलाकर परिपूर्णता के चरण तक पहुंचाएगा। पिछले कुछ कार्यक्रमों में जिन बातों का उल्लेख किया गया उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईसाई, यहूदी और हिंदू जैसे बड़े धर्मों में भी महामुक्तिदाता का उल्लेख किया गया है। और यही नहीं, इन धर्मों में न केवल महामुक्तिदाता की बात की गई है बल्कि महामुक्तिदाता के विषय का उल्लेख इन धर्मों में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में हुआ है।
दोस्तों, यहाँ पर संक्षेप में हम आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म सन 563 वर्ष ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके बाद सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इस बात का उल्लेख भी करते चलें कि बोध गया इस समय भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इस समय दुनिया में करोड़ों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और जापान जैसे देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बहुत अधिक संख्या है। इस समय बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म की एक शिक्षा यह है कि इस दुनिया में दुख है। इंसान के जन्म में, बूढ़ा होने में, बीमारी में, प्रियतम से दूरी में, नापसंद चीजों के साथ रहने में, चाहत को न पाने आदि सब में दुख निहित है।
गौतम बुद्ध की एक शिक्षा यह है कि इस दुनिया में दुख है तो इसका कारण दुनिया में जो चीजें हैं उनसे इंसान का मोह है और इंसान को चाहिए कि सांसारिक चीजों से प्रेम को अपने दिल से निकाल दें और अपने अंदर यानी उसे अपनी आत्मा को सद्गुणों से सुसज्जित करना चाहिए और सद्गुणों से सुसज्जित होने के बाद इंसान को जो आत्मिक शांति मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हिंदू धर्म से बहुत निकट हैं। ये धर्म एशिया के पूर्व में अधिक प्रचलित है, यानी एशिया के पूर्वी देशों और क्षेत्रों में इस धर्म के मानने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बौद्ध धर्म के मानने वाले केवल एशिया के पूर्व में ही हैं, बल्कि इस धर्म के अनुयायी वे पूरी दुनिया में मौजूद हैं, परंतु उनकी सबसे अधिक संख्या एशिया के पूर्व में ही है।
बौद्ध धर्म के मानने वालों के अनुसार विभिन्न कालों में दुनिया का पतन होता है और अराजकता का बोलबाला हो जाता है। लोग पाप करने लगते हैं, नैतिक बुराइयां आम हो जाती हैं, परंतु हर बार एक महान व्यक्ति प्रकट होकर लोगों का मार्गदर्शन करता और उन्हें मुक्ति दिलाता है और जमीन की बहुत सारी बरकतों को दोबारा पलटा देता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार मैतरिया नाम का मुक्तिदाता होगा। आरंभ में वो एक राजा था जिसने धीरे धीरे ईश्वरीय रूप धारण कर लिया और वो आसमान पर चला गया और इस समय वो एक इंसान के रूप में जमीन पर वापस आने की प्रतीक्षा में है और वो लोगों को कमाल व परिपूर्णता के शिखर पर पहुंचाएगा।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहि सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को
महामुक्तिदाता के प्रकट होने से पहले जो परिस्थितियां होंगी उसके बारे में बौद्ध धर्म के मानने वालों में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। उनमें से कुछ का ये मानना है कि महात्मा गौतम बुद्ध के 5000 साल बाद उनकी शिक्षाओं का पतन हो जाएगा और इंसान की उम्र 10 साल हो जाएगी, परंतु ये हाल बाकी नहीं रहेगा और उसका कारण ज्ञात नहीं है। लोग दोबारा भलाइयों की ओर लौट आएंगे, यहाँ तक कि इंसान की उम्र 10 से 80 साल हो जाएगी। यहाँ तक कि वो समय भी आ जाएगा जब एक शक्तिशाली और न्यायी राजा का शासन आरंभ होगा।
बौद्ध धर्म के मानने वालों के अनुसार ये वो समय होगा जब मैतरिया आसमान से उतरेगा और लोगों के मध्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और नैतिक सद्गुणों का प्रचार प्रसार करेगा। परंतु बौद्ध धर्म के जो दूसरे अनुयायी हैं उनका मानना है कि मैतरिया का जोर उस समय होगा जब पूरी दुनिया अत्याचार व अन्याय से भर चुकी होगी। वो दुनिया के नैतिक पतन के बाद नई दुनिया का निर्माण करेगा। वो जिस दुनिया का निर्माण करेगा वो नेकियों से भरी होगी, प्रेम, शांति, सुरक्षा और नैतिक मूल्यों से भरी होगी। बौद्ध धर्म के अनुसार जो मुक्तिदाता होगा वो लोगों को अच्छाइयों की ओर आमंत्रित करेगा, बुराइयों से रोकेगा। जो लोग उसके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, वे कामयाब हो जाएंगे। परंतु अधिकांश लोग उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका नाश हो जाएगा। मैतरिया जिस समाज का निर्माण व गठन करेगा वो घमंड और दूसरी बुराइयों से खाली होगा। बुराइयों का अंत हो जाएगा और पूरी दुनिया शांति व न्याय से भर जाएगी। चारों ओर शांति ही शांति होगी। पूरी दुनिया में कोई बुरा व गलत कार्य नहीं करेगा।
सारांश यह है कि बौद्ध धर्म भी अपने अनुयायियों को मुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना देता है। बौद्ध धर्म भी जिस मुक्तिदाता के आने की शुभ सूचना देता है वो दुनिया में सद्गुणों का प्रचार एवं प्रसार करेगा, दुनिया को न्याय से भर देगा, कोई बुरा कार्य नहीं करेगा, चारों तरफ शांति ही शांति होगी। दूसरे शब्दों में महामुक्तिदाता के बारे में बौद्ध धर्म का भी वही दृष्टिकोण है जो इस्लाम का है। बौद्ध धर्म का मानना है कि महामुक्तिदाता की सरकार विश्वव्यापी होगी, वो पूरी दुनिया पर शासन करेगा, वो ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा में है। मुक्तिदाता के आगमन का उद्देश्य मानवता को परिपूर्णता के शिखर तक पहुंचाना है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार इंसानों का इंसानों और दूसरे जानवरों के साथ समन्वय और प्रेम सद्गुणों के परवान चढ़ने और व्यापक शांति का कारण बनेगा।
बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्तिदाता की विश्वव्यापी सरकार में सारी दुनिया के लोगों का एक ही धर्म होगा और जो संपत्ति है उसका समस्त लोगों के मध्य न्यायपूर्ण ढंग से वितरण होगा। लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अलबत्ता बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार मुक्तिदाता के बाद दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके बाद दूसरा मुक्तिदाता आएगा और इस प्रकार कई मुक्तिदाता हो सकते हैं।
जिन धर्मों की बात अब तक हमने की उनके अलावा भी दुनिया में बहुत से धर्म, पंथ और ऐसे समुदाय हैं जिनमें मुक्तिदाता के आने की बात कही गई है। केंद्रीय अमेरिका के कुछ रेड इंडियंस का ये मानना है कि उनके मध्य एक व्यक्ति था जो धीरे धीरे एक ईश्वरीय इंसान हो गया और अज्ञात कारणों से वो लापता हो गया, परंतु भविष्य में वो लौट कर आएगा और लोगों को मुक्ति दिलाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि दुनिया के अंतिम समय में जमीन के पूरब से ईश्वर की ओर से एक मुक्तिदाता आएगा और वो आंदोलन करेगा और समस्त समुदायों व इंसानों को एकजुट करेगा और पूरी दुनिया पर शासन करेगा। ब्रिटेन के कुछ द्वीपों में रहने वाले भी इसी प्रकार का विश्वास रखते हैं। उनका भी मानना है कि आर्थर नाम का व्यक्ति एक द्वीप में रहता है, वो जुहूर करेगा और पूरी दुनिया में वो शासन करेगा।
इसी प्रकार स्कॉटलैंड के बहुत से लोगों का ये मानना है कि इंसान मुसीबतों में गिरफ्तार होंगे, विश्वव्यापी लड़ाई होगी जिससे लोगों में बड़ी तबाही होगी। उस वक्त उदीन नाम के व्यक्ति का जुहूर होगा और वो सबको पराजित करेगा। अफ्रीका के विभिन्न कबीलों के लोगों में भी मुक्तिदाता के आने का विचार पाया जाता है। अलबत्ता मुक्तिदाता के बारे में जिन बातों का उल्लेख हमने किया उन सबका संबंध इस समय दुनिया में मौजूद धर्मों से है, अन्यथा अतीत में बहुत सारी जातियां और कौमें ऐसी थीं जो मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थीं। जो जातियां मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थीं उनमें मिस्रियों, यूनानियों और रोमियों का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा अतीत में बहुत से बुद्धिजीवी और दर्शन शास्त्री भी गुजरे हैं जो महामुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे, जिस तरह से आज भी बहुत से बुद्धिजीवी और दर्शन शास्त्री हैं जो मुक्तिदाता के आने पर आस्था रखते हैं। सारांश यह है कि बहुत सारे धर्म, समुदाय और कौमें मुक्तिदाता के आने पर सहमत हैं और सबका मानना है कि मुक्तिदाता दुनिया को शांति, सुरक्षा व न्याय से भर देगा और वो मानवता को कमाल के शिखर पर पहुंचा देगा।
सवाल ये उठता है कि समय मानवता कमाल के शिखर पर क्यों नहीं पहुंच सकती, जबकि ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से इंसान ने बहुत प्रगति कर ली है। इस सवाल का एक जवाब है ये कि इंसान के अंदर बहुत से ऐसी क्षमताएं व योग्यताएं मौजूद हैं जो शांतिपूर्ण वातावरण में ही निखर कर सामने आएंगी, और इन योग्यताओं के निखर कर सामने आने के लिए वो उसी वक्त स्थापित होगी जब महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा। महान व सर्वसमर्थ ईश्वर से दुआ है कि हम सब का शुमार महामुक्तिदाता के वास्तविक प्रतीक्षकों में करे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशा की किरण, और अब सभा के अंत में आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है कार्यक्रम आज कल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि ईरान के हालिया उपद्रव के पीछे किन सरकारों का हाथ था। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। मित्रों, ईरान की हालिया अशांति इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के उद्देश्य से उत्पन्न की गई। इस्लामी गणतंत्र ईरान के शत्रु पिछले 43 वर्षों से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराने के लिए हर अवसर से लाभ उठाते आए हैं। उनका ये काम आज भी जारी है जो उपद्रव के रूप में दिखाई दे रहा है। वे जहां एक और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि को खराब करते हुए ईरानोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं पर ईरान के भीतर अशांति पैदा करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। ईरान को अशांत बनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने रंगीन क्रांति का सहारा लिया। इसको उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है। ईरान में अशांति स्थापित करने और उसको लंबा खींचने के लिए वे हर मुद्दे को प्रयोग करते आ रहे हैं। मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, चुनाव कैसे आयोजित कराए जाएं, चुनावी परिणामों में संदेह उत्पन्न करना या कोई भी अन्य मुद्दा जिससे ईरान में अशांति फैले और मतभेद पैदा हो उनका प्रयोग इस्लामी गणतंत्र के शत्रु लगातार कर रहे हैं। अगर किसी विषय से मतभेद तो पैदा नहीं होता, किंतु मतभेद गहरा हो जाता है तो उसे भी वे नहीं छोड़ते। शत्रुओं का ये काम पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। जैसे ही उनको कोई मौका मिलता है उसको वे तुरंत ईरान के विरुद्ध प्रयोग करने में लग जाते हैं। हालांकि ये एक वास्तविकता है कि पूरी दुनिया के देशों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना है। इन देशों में सरकारों के विरुद्ध प्रदर्शन भी होते रहते हैं। वहां के बहुत से निवासी अपनी सरकारों के क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए वे सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करते हैं। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होता आया है और सरकारें उनसे अपने हिसाब से निबटती रहती हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान क्षेत्र का सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया की किसी भी क्रांति में क्रांति की सफलता के 50 दिनों के भीतर इस बात के लिए जनमत संग्रह नहीं करवाया गया कि वहां की जनता किस प्रकार की सरकार की इच्छुक है। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस देश की जनता ने उसी वर्ष 5 बार अलग अलग अवसरों पर अपने मत का प्रयोग किया। सबसे पहला मतदान तो सरकार के गठन के लिए किए जाने वाला जनमत संग्रह था। दूसरा चुनाव मजलिसे खुबरगान का था। तीसरा चुनाव जनमत संग्रह के लिए बनाए गए मसौदों के लिए था। चौथा मतदान राष्ट्रपति पद के लिए किया गया और पांचवा मतदान संसद का चुनाव था। पिछले 43 वर्षों के दौरान इस्लामी गणतंत्र ईरान में 40 से अधिक बार मतदान कराए गए हैं जिनमें जनता ने अपने मतों का प्रयोग किया। वर्तमान विश्व के लोकतांत्रिक देशों में बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि वहां पर जनता ने अपने भविष्य के निर्धारण के लिए इतनी अधिक बार मतों का प्रयोग किया हो। इसी के साथ इस्लामी गणतंत्र ईरान के निकट ऐसे भी देश हैं जहां पर राजशाही कबीलों की या एक ही परिवार की हुकूमतें हैं। ये हुकूमतें मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन करती हैं, किंतु उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई आवाज पश्चिम से नहीं उठने पाती। उदाहरण स्वरूप यमन में अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए हथियारों के माध्यम से हजारों लोगों को बमबारी करके मार दिया जाता है, खुला जनसंहार होता है, आम लोगों के घरों पर बम बरसाए जाते हैं, किंतु ये कुछ भी मानवाधिकारों के समर्थन का दावा करने वालों को दिखाई नहीं देता। एक राजशाही शासन व्यवस्था के आलोचक के आरी से टुकड़े करके उस पर एसिड डाल दिया जाता है और ये कुछ भी मानवाधिकारों के समर्थकों को दिखाई नहीं देता। ऐसे में वे केवल मौन धारण किए रहते हैं। जहां पर उनको कुछ नहीं करना होता है वहां पर वे तथाकथित एक बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। क्षेत्र के सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश अर्थात इस्लामी गणतंत्र ईरान के मुकाबले में पश्चिमी सरकारें हमेशा ही दो मुखी नीतियां अपनाती आई हैं। ईरान के हालिया उपद्रव के बारे में भी ऐसा ही किया जा रहा है। पश्चिमी सरकारों ने क्षेत्र की तानाशाही सरकारों के साथ समन्वय करते हुए ईरान के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के लिए कई संचार माध्यमों को तैयार किया है, जिनमें मनोतो, ईरान इंटरनेशनल, बीबीसी फारसी और कुछ अन्य हैं जो लगातार ईरान विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं। इन्होंने ईरान के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा है। इसका मुख्य लक्ष्य ईरान की सरकार और ईरानी राष्ट्र के बीच में मतभेद पैदा करना है। वे ये चाहते हैं कि देश के राजनेताओं और जनता के बीच मतभेद पैदा हो जाएं ताकि उनके बीच अविश्वास का माहौल बन जाए। इस काम के लिए वे हर विषय या हर मुद्दे का दुरुपयोग करते रहते हैं। ईरान में महसा अमीनी नामक एक युवती की मौत को बहाना बनाकर शत्रुओं ने एक नया षड्यंत्र आरंभ किया जिसको उन्होंने व्यावहारिक बनाया। इस विषय को वे ईरान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ध्यान योग्य बात यह है कि कई मेडिकल रिपोर्ट में ये बात बताई जा चुकी है कि महसा अमीनी की मौत किसी भी प्रकार की हिंसा से नहीं हुई है और उसके शरीर पर किसी भी तरह की हिंसा के चिन्ह भी नहीं पाए गए हैं। उसको पहले से कुछ बीमारियां थीं जिसके कारण कोमा में जाने के बाद वो जीवित वापस नहीं आ पाई, लेकिन उसकी मौत को शत्रुओं ने एक मुद्दे के रूप में प्रयोग करके हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया। महसा के विषय पर तो पश्चिमी संचार माध्यम बहुत हुल्लड़ हंगामा कर रहे हैं, जबकि इसी दौरान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी कार्रवाई के दौरान दसियों लड़कियां मारी गईं, किंतु उन छात्राओं की मौत पर न तो पश्चिमी सरकारों की ओर से और न ही मानवाधिकार संगठनों की ओर से कोई बयान आया। आतंकवादी घटना का शिकार मृतक छात्राओं के परिजनों से भी किसी ने संवेदना तक प्रकट नहीं की। आजकल पश्चिमी संचार माध्यमों में जिस बात को बहुत ही व्यापक स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है वो उपद्रवियों के साथ ईरान के सुरक्षा बलों का व्यवहार है। सरकारी और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई को हिंसक एवं बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के रूप में इस समय पेश किया जा रहा है। हिंसा पर उतारू उपद्रवियों और सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को पश्चिमी संचार माध्यम निर्दोष तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वालों को दोषी के रूप में पेश कर रहे हैं। ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि दुनिया के किसी भी देश में जब कुछ लोग सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करने पर उतारू हो जाते हैं तो उस देश की पुलिस या वहां के सुरक्षा बल इस काम को रुकवाने के प्रयास करते हैं। यही काम जब ईरान में किया जाता है तो वो अत्याचार हो जाता है, जबकि अगर किसी दूसरे देश में ये काम किया जाए तो वो पूरी तरह से न्यायोचित और कानूनी माना जाता है। टेलीविजन पर कई बार पश्चिमी देशों में विरोध प्रदर्शनों को देखा जा सकता है। वहां पर लोग सड़कों पर निकलकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हैं। उस देश की पुलिस उनको रोकती है और उनके विरुद्ध बल का भी प्रयोग करती हुई दिखाई देती है, किंतु यह काम पश्चिम की दृष्टि में कभी भी गलत नहीं होता। किंतु जब यही काम ईरान में होने लगता है तो मानवाधिकारों का उल्लंघन और अमानवीय काम बनकर रह जाता है। ईरान में उपद्रवियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में कई सुरक्षा बल शहीद हो गए, किंतु पश्चिमी संचार माध्यमों ने इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और इस ओर कोई भी संकेत नहीं किया। हालिया दिनों में ईरान में घटने वाली घटनाओं को लेकर पश्चिमी देशों का ये भेदभावपूर्ण व्यवहार बताता है कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें अमरीका, ब्रिटेन और कनाडा सर्वोपरि हैं। पश्चिमी संचार माध्यमों के कहने पर तेहरान की कुछ सड़कों पर लगाए जाने वाले नारे उनकी नीयत को स्पष्ट करते हैं। इन सबका मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच मतभेद फैलाकर उनको अलग करना है। ईरान के भीतर कुछ आतंकी गुटों का सक्रिय हो जाना और इसी के साथ ईरान के बाहर विशेषकर इराक के कुर्दिस्तान और पाकिस्तान में कुछ आतंकी गुटों की गतिविधियां ये बताती हैं कि पश्चिमी देश अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आतंकवादियों का समर्थन करके और साथ ही मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़कर वे इस्लामी गणतंत्र ईरान रूपी विशाल वृक्ष को नष्ट कर देंगे। ایران کے زاہدان نگر میں ایک آتنکی گٹ کے کچھ آتنکوادیوں نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا، جس کے پریڑام سوروپ کچھ سرکشا کرمی شہید ہو گئے۔ اس آتنکی حملے میں لپت لوگوں کی گرفتاری کے بعد ان کے پاس سے ملنے والے ہتھیار وہ تھے جو ان کو ودیشوں سے دیے گئے تھے۔ اس بات سے زاہدان کی آتنکی گھٹنا کی واسطوکتا کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری اور کردستان میں بھی کچھ ایسے آتنکی گٹ سکریہ ہیں جن کے ہاتھ ہزاروں نردوش مہیلاؤں، بچوں اور عام لوگوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں۔ وہ پچھلے 4 دشکوں سے اس پرکار کی کاروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ ان آتنکی گٹوں نے افسر کا لابھ اٹھاتے ہوئے ایران میں اشانتی کو ہوا دینے اور اپدرو کو بھڑکانے کے لیے اتھک پریاس کیے۔ کردستان میں جو آتنکی گٹ سکریہ ہیں ان میں پیجاک تتھا کوملے ادھک سکریہ ہیں۔ ان آتنکی گٹوں نے پچھلے 40 برسوں کے دوران اپنے ہی دیش واسیوں اور وہاں کے سرکشا بلوں کو بھی نہیں بخشا۔ ان سارے کے سارے آتنکی گٹوں کو پوری طرح سے پشچم کا سمرتھن پراپت ہے۔ یہ ایسے آتنکی گٹ ہیں جن کے پشچمی دیشوں میں کاریالے بھی ہیں۔ یہ آتنکی گٹ کیونکہ ایران کے ورودھ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو پشچمی دیشوں کا پورا سمرتھن حاصل ہے۔ IRGC یا سپاہ پاسداران نے عراق کے کردستان میں کچھ آتنکی گٹوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے سب کو یہ بتا دیا کہ ایران کے ورودھ کام کرنے والے کسی بھی آتنکی گٹ کے ساتھ کڑائی سے نپٹا جائے گا۔ اس کا ایک سندیش یہ بھی ہے کہ دیش کی سرکشا کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا۔ دوستوں، کارکرم کا سمے سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں، آپ ہمارے پرسارن کو شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارا پریاس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کارکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوش اوگت کرواتے رہیے۔ تو کارکرم کا اب ہم انت پہ پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلی سبھا تک کے لیے خدا حافظ۔ Thank you.